लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हवाई अड्डे पर गुरुवार 26 अगस्त को हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। मीडिया खबरों के अनुसार इन हमलों में 13 अमेरिकी सैन्य कर्मियों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और अनेक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता कोलीवल ने जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमले को एक भयावह कृत्य करार देते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट ने काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, जो कि आईसिल या दाएश से जुड़ा हुआ एक गुट बताया गया है। सुरक्षा परिषद ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबले की अहमियत को रेखांकित किया है। सुरक्षा परिषद ने जोर देकर कहा है कि ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के लिए खतरा पैदा करने या हमला करने में ना किया जाए। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कामकाज के लिए अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों और यूएन के सदस्य देशों के राजनयिकों और वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद अहम है। इससे पहले गुरुवार को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों की निंदा की थी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे माय टोटल कंडेमनेशन अबाउट द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन काबुल।
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि वो काबुल में भयावह आतंकवादी हमलों की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और इस हमले में जान गंवाने वाले सभी अफगानों और वहां अन्य अफगानों की सेवा करते हुए मारे जाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने जिनेवा में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों को एक भयावह कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि इन हमलों का मकसद था कि जितना संभव हो सके उतनी बड़ी संख्या में आम लोगों को निशाना बनाया जाए। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने इस हमले के दोषियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में जल्द से जल्द लाने की मांग की है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आगाह किया है कि अफगानिस्तान में हिंसक संघर्ष, सूखे और कोविड-19 महामारी से अविश्वसनीय स्तर पर एक संकट आकार ले रहा है, जो स्थानीय समुदायों को मानवीय विनाश की ओर ढकेल रहा है। 40% से अधिक फसलें सूखे और 3 वर्षों से जल की किल्लत के कारण बर्बाद हो गई हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा का संकट और गहरा हुआ है। संगठन के मुताबिक यह अफगानिस्तान के लिए एक बेहद जरूरत भरी घड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे बढ़कर समर्थन देना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
WFP के क्षेत्रीय निदेशक जॉन एलियफ ने बताया,
14 million people in Afghanistan today are struggling to put food on the table. The price of wheat has gone up by 25% in the last month.
अफगानिस्तान में करीब 1,40,00,000 लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अनाज की कीमतें पिछले कुछ महीनों में 25% तक बढ़ गई हैं। मौजूदा आर्थिक हालात में स्थानीय जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाना और बाल कुपोषण से निपटना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे हालात में स्थानीय आबादी के लिए कोई भविष्य देख पाना भी कठिन है। एक ऐसा भविष्य जो खाद्य सुरक्षित हो और बच्चों के लिए कुपोषण से भी मुक्त हो। अफगानिस्तान के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के क्षेत्रीय निदेशक जॉन एलियफ के शब्द। उधर अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने गुरुवार को 2,40,00,000 डॉलर की तत्काल राहत रकम जुटाने की अपील जारी की है, ताकि पिछले 2 महीनों में देशभर में विस्थापित हुए लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और इम्पीरियल कॉलेज लंदन की नई रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 30 से 79 वर्ष आयु वर्ग में हाइपरटेंशन यानि ब्लड प्रेशर, उच्च या बढ़े हुए रक्तचाप की अवस्था वाले वयस्कों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 65 करोड़ से बढ़कर 1,28,00,000,000,000 पहुंच गई है। इनमें से 72 करोड़ लोगों को इस स्वास्थ्य समस्या यानि ब्लड प्रेशर का इलाज उपलब्ध नहीं है। हाइपरटेंशन की अवस्था से हृदय, मस्तिष्क और गुर्दे की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व भर में यह मौत और बीमारी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
ये पहली बार है जब हाइपरटेंशन संबंधी वैश्विक रुझानों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में वर्ष 1990 से 2019 के दौरान 180 से ज्यादा देशों में 30 से 79 वर्ष आयु वर्ग में 10 करोड़ लोगों के ब्लड प्रेशर और उनके उपचार संबंधी आंकड़ों की पड़ताल की गई। धनी देशों में हाइपरटेंशन की दर बहुत कम है, जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में ये बढ़ गई है। कनाडा, पेरू और स्विट्जरलैंड में वर्ष 2019 में हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका और पैराग्वे में महिलाओं और हंगरी, पैराग्वे और पोलैंड में पुरुषों में हाइपरटेंशन की दर सबसे अधिक है। घर या किसी स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लड प्रेशर को मापकर हाइपरटेंशन के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। साथ ही कम कीमतों वाली दवाओं के जरिए इसका उपचार भी संभव है। इसके बावजूद हाइपरटेंशन की अवस्था में रह रहे 58 करोड़ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्या से अनजान हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित इच्छानुसार और गरिमामय ढंग से म्यांमार वापसी के अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण व तत्काल कार्यवाही का आह्वान किया है। 25 अगस्त 2021 को रोहिंग्या शरणार्थी संकट के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये संकट अगस्त 2017 में उस समय शुरू हुआ जब म्यांमार के उत्तरी हिस्से में कुछ सशस्त्र गुटों ने कुछ पुलिस चौकियों पर हमले किए थे। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एक बयान जारी करके सचेत किया है कि म्यांमार में व्यवस्थागत भेदभाव, अधिकार छीने जाने और सामुदायिक हिंसा के बुनियादी कारणों से निपटा जाना बेहद अहम है। उन्होंने ऐसी कार्रवाई तत्काल किए जाने की पुकार लगाई है। यूएन प्रमुख ने बुधवार को जारी अपने वक्तव्य में क्षोभ जताया कि आज भी लगभग 10,00,000 रोहिंग्या शरणार्थी विकट हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। इन शरणार्थी शिविरों में रोजमर्रा का जीवन कठिन है और अक्सर यहां के निवासियों को भारी बारिश के कारण जलभराव, भूस्खलन के अलावा आग लगने की घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या समुदाय, बांग्लादेश सरकार व मेजबान आबादी के साथ एकजुटता जारी रखने का आह्वान किया है, जो कि उदारता का भाव दर्शाते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे हैं। यूएन महासचिव ने भरोसा दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र सक्रिय रूप से समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु तू जीवन दाता
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण वह अकेला नहीं रह सकता। वह किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित होता है। संत पापा फ्रांसिस ने कैथोलिक कलीसिया द्वारा घोषित सृष्टि के मौसम में अपील की है कि हम एक दूसरे की चिंता करें। उन्होंने 3 सितम्बर के ट्वीट संदेश में कहा, महामारी ने उजागर किया है कि सभी लोग कमजोर हैं एवं परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम सृष्टि समेत सबसे न्यूनतम से शुरू कर सबसे अधिक प्रभावित लोगों के साथ एक दूसरे की चिंता न करें तो हम दुनिया की चंगाई नहीं कर पाएंगे। यूरोपीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन एवं यूरोपीय कलीसियाओं के सम्मेलन ने एक संयुक्त बयान जारी कर अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता एवं यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों के समर्थन का आह्वान किया है। बयान में दोनों सम्मेलनों ने अफगानिस्तान से मिलने वाले रिपोर्टों पर हैरानी व्यक्त की है, जहां लोग पीड़ित एवं असहाय हैं तथा बहुत अधिक डरे हुए हैं। यूरोपीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जीन क्लाउडियो होलरिक एवं यूरोपीय कलीसियाओं के सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय क्रिस्टन क्रेजर द्वारा हस्ताक्षरित बयान में उन लोगों के लिए विशेष चिंता व्यक्त की गई है जिन्हें अभी भी निकासी की आवश्यकता है। साथ ही कमजोर समूहों के सदस्य जो अवसरों को खोने और संभावित दुर्भाव का सामना करने के बड़े जोखिम में हैं। बयान जारी करते हुए दोनों निकायों ने उन सभी के प्रति अपना धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है जो अनिश्चित सुरक्षा स्थितियों के बावजूद निकासी और मानवीय प्रयासों में लगे हुए हैं। कहा गया है कि हम अफगानिस्तान के पीड़ित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों, बच्चों और कमजोर व्यक्तियों के साथ विकलांग लोगों के प्रति गहरी एकजुटता व्यक्त करते हैं। दोनों सम्मेलनों ने लिखा है कि वे सभी दलों से अपील करते हैं कि कानून के शासन और सभी के मौलिक अधिकारों के प्रति संवाद और सम्मान के माध्यम से शांति के लिए निरंतर काम करें। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे उन लोगों की रक्षा करें जो शोषण के निशाने पर हैं और जिनका जीवन खतरे में है। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार रक्षक, पत्रकार, कलाकार, जाति और लिंग के आधार पर अल्पसंख्यक सदस्य, साथ ही साथ ख्रिस्ते एवं अन्य धार्मिक समुदाय। दोनों अध्यक्षों ने सभी निकासी कर्मियों और मानवीय संगठनों में शामिल लोगों की सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है तथा यूरोपीय संघ से देश में मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है।
बयान में आगे कहा गया है कि पड़ोसी देशों और उसके बाहर अफगान शरणार्थियों की काफी भीड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि संकट में हम यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों से अफगानों को हिंसा और आतंक से बचाने में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए साझा एवं समन्वित एकजुटता प्रयासों का नेतृत्व करने की अपील करते हैं। यह अफगानियों द्वारा सामना किए जा रहे क्रूर चेहरे के बीच मानवता दिखाने का समय है। यह साबित करने का का है कि यूरोपीय संघ का मूल्य एक खाली बयानबाजी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक मार्गदर्शक सिद्धांत भी है, जो केवल राजनीतिक या आर्थिक विचारों से परे नैतिक मानकों के आधार पर कार्रवाई की ओर ले जाता है। बयान में कहा गया है कि अप्रवासियों के प्रवास से संबंधित निर्णय यूरोपीय संघ और इसके सदस्य राज्यों द्वारा यूरोपीय संघ के मूलभूत मूल्यों को लागू करते हुए मानवाधिकारों और जिनेवा कन्वेंशन पर यूरोपीय कन्वेंशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए विवेक के साथ किए जाने चाहिए। अंत में दोनों सम्मेलनों के अध्यक्षों ने कहा कि हमारी कलीसियाएं सभी विश्वासियों से आग्रह करती हैं कि हमारे अफगानी भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि उनका देश स्थायित्व और शांति प्राप्त कर सके तथा सभी की मानव प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए हम अपनी प्रार्थनाओं में हाल के आतंकवादी हमलों से पीड़ित और उनके परिवारों की याद करते हैं। पोलैंड की 6 सदस्यों वाली कार्तिक महिला समिति ने पोलैंड के कार्तिक धर्मदर्श सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्मदर्श स्तानिस्लाव गाडेस्की से बृहस्पतिवार को पोजनान में मुलाकात की। धर्मदर्श सम्मेलन की वेबसाइट अनुसार मुलाकात में उन्होंने अक्टूबर में होने वाले सिनेट की तैयारी में समिति की सहभागिता पर विचार किया। समिति की प्रवक्ता सिस्टर बारबरा के अनुसार करीब 2 घंटे की मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। धर्मदर्श समिति के प्रवक्ता ने कहा कि सिनेट को विश्वासियों के बीच प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। हमने भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि जैसा कि पोप फ्रांसिस आह्वान करते हैं कि हम कलीसिया के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाधर्मदर्श स्तानिस्लाव ने कहा, समय का उपयोग ईश्वर के सभी लोगों के साथ व्यापक परामर्श के लिए किया जाना चाहिए। धर्म प्रांत स्तर पर परामर्श अक्टूबर की शुरुआत में होगा और अगले अप्रैल में समाप्त होगा। उत्तरी नाइजीरिया के जम्फारा राज्य में सशस्त्र डाकुओं ने 73 छात्रों का अपहरण कर लिया। पुलिस और सेना बच्चों को बचाने में जुटी है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में जम्फारा राज्य के काया गांव स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बुधवार सुबह बंदूकधारियों ने करीब 73 छात्रों को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बचाव अभियान शुरू कर दिया है और छात्रों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिसम्बर के बाद से स्कूलों से 1000 से अधिक छात्रों का अपहरण कर लिया गया है। स्थानीय रूप से डाकुओं के रूप में संदर्भित बंदूकधारियों ने अपने बच्चों की रिहाई के लिए माता पिता से बड़ी फिरौती की मांग की है, जबकि उनमें से अधिकांश को भुगतान के बाद रिहा कर दिया गया है। कुछ की मृत्यु हो गई है या कैद में रहते हुए मारे गए हैं। नाइजीरिया में फिरौती के लिए अपहरण पहले बोको हराम चरमपंथी इस्लामी समूह द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इस रणनीति को अन्य आपराधिक गिरोहों द्वारा भी अपनाया गया है। पिछले शुक्रवार को उत्तर मध्य नाइजीरिया के नाइजर राज्य के एक स्कूल में बंदूक की नोक पर अगवा किए गए कई बच्चों को मुक्त कर उनके परिवारों को सौंप दिया गया था। समाचार रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि माता पिता ने लगभग 70 मिलियन नायरा की फिरौती दी। जमतारा उत्तरी नाइजीरिया के 4 राज्यों में से एक है जिसने डाकुओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। यूनिसेफ के अनुसार भूकंप से प्रभावित दक्षिण पश्चिम हैती में लगभग 5,40,000 बच्चे पानी से संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हैती में यूनिसेफ के प्रतिनिधि ब्रूनो मेस ने कहा, भूकंप से प्रभावित हजारों बच्चों और परिवारों का जीवन अब खतरे में है, क्योंकि उनके पास स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।